नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2:1 में, जहां पर हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाएंगे और हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों, हमारे हृदय, हमारे विचारों को आप खोलें, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदय से बातचीत करने पाए। यदि हम बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, तकलीफ और कष्ट में हैं, प्रभु आप हमें चंगाई प्रदान करें, हमें स्वस्थ करें, भला चंगा करें और अपने वचन के द्वारा से हमें सामर्थ प्रदान करें। इस समय को हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके निकटता में लाते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि कोढ़ मुक्त मनुष्य के प्रचार के कारण भीड़ ने यीशु को आघेरा था। यीशु ने एक व्यक्ति को चंगाई दिया जो कोढ़ से पीड़ित था और भीड़ उसे आघेरा, और यीशु सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसे कफरनहूम छोड़कर जंगल में चले जाना पड़ा था। कुछ समय बाद यीशु लौटकर कफरनहूम में आता है और शिमोन पतरस की सास के घर में है, और हम आगे देखते हैं कि तुरंत समाचार फैल गया कि यीशु आ गया है, और लोगों की भीड़ ऐसी इकट्ठी हो गई कि द्वार से घर में प्रवेश करना भी असंभव था। तब हम मरकुस 2 उसके 2 में आगे पढ़ते हैं, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। मित्रों, हमारे प्रभु की सेवा में जो मुख्य बात था वह सुसमाचार प्रचार पर था, और आज भी हमें अपने प्रचार में इसी पर बल देना है। हमें परमेश्वर के वचन, उसकी अखंडता और उसके अचूक होने पर बल देना है। इस बारे में मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, मुझे अपने वचन पर अधिकाधिक विश्वास प्रदान कर। मैं जानता हूं कि आज उसका मनुष्य के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मैं यह भी जानता हूं कि वचन ने मेरे लिए क्या किया है। मित्रों, इस कारण मुझ में जो विश्वास है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझ में होना है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या कभी इसका मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हमें सदा स्मरण रखना है, और उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। इसे हम यशाया 55 उसके 11 पद में देख सकते हैं। मैं यह पढ़कर अत्यधिक प्रसन्न हूं कि हमारे प्रभु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। मित्रों, हमारा ध्यान अब एक जनसमूह की ओर आकर्षित किया जा रहा है जो 5 का प्रतिनिधित्व है। वे कफरनहूम की ओर धूल भरी सड़क पर आ रहे हैं। तब हम मरकुस 2:3-4 में पढ़ते हैं, लिखा है, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ अर्थात लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। मित्रों, मरकुस हमारा ध्यान इन 5 की ओर आकर्षित करता है। उनमें से एक लकवे से पीड़ित है। वह अकेले तो कभी भी वहां पहुंचने में सफल नहीं होता, इसलिए उसे चारपाई पर लाया गया था। उसके साथ 4 और थे जो उसकी चारपाई को चारों कोनों से उठाए हुए थे। अब उनके लिए प्रवेश करने को न तो द्वार में स्थान था और न ही किसी झरोखे में। हर जगह लोग खचाखच भरे हुए थे। आज मैं कलीसियाओं में देखता हूं कि हर एक काम के लिए एक समिति बनी होती है। यही सबसे बड़ा काम है जो कि वे करते हैं। कलीसिया का पासवान या पादरी इन समितियों पर भी आश्रित रहता है। कलीसिया का सब काम यही समितियां करती हैं। किसी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है कि समिति उन मनुष्यों का समूह है जो बातों का ब्यौरा लिखते हैं और बैठकर समय व्यर्थ गंवाते हैं। किसी और ने कहा कि एक समिति के सदस्य ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, परंतु एकजुट होकर यह निर्णय अवश्य ले सकते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता है। उनका काम वास्तव में यही है। अब यदि उनकी व्यवस्था भी हमारी जैसी ही होती तो उनके पास एक द्वार समिति होती जो आकर कहती, आप द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। एक और समिति वहां होती जो झरोखा समिति कहलाती और उसका निर्णय यह होता कि झरोखे में स्थान की कमी के कारण वहां से आवागमन वर्जित है, अर्थात आप नहीं जा सकते। अब तीसरी समिति यह होती छत समिति, संभवतः दया दिखाती और कहती ठीक है स्थिति आपातकालीन है इसलिए छत खोलकर रोगी को नीचे उतार दो, इसी बहाने हम छत तो नया बनवा ही लेंगे। समितियों में सौभाग्य से एक समिति तो ऐसी होगी जो कुछ काम कर दिखाए। मित्रों अंततः वे रोगी को छत के द्वारा नीचे उतारने का निर्णय लेते हैं। अब जब उन्होंने रोगी को नीचे उतार दिया तो संभवतः उन्हें कुछ झिझक का एहसास हुआ कि उन्होंने सभा में विघ्न डाला है। आप दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि वे कैसे थे। हम नहीं जानते कि यीशु उस समय क्या प्रवचन कर रहा था, परंतु यह तो निश्चित है कि वहां अकस्मात ही मौन छा गया। यीशु निश्चय ही उन्हें देखकर मुस्कुराया होगा। मार्कुस 2 उसके 5 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, अर्थात लकवे से पीड़ित व्यक्ति से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मित्रों यीशु ने किसका विश्वास देखा? लकवे के रोगी की चंगाई के पीछे किसका विश्वास था? मैं कई वर्ष तक तो इस प्रश्न से परेशान रहा और मैं सदैव यही सोचता था कि मरकुस उन चार पुरुषों के लिए कह रहा है, परंतु जब मैंने इस पर अधिक चिंतन किया तब समझ में आया कि वह उन लोगों के विश्वास के बारे में कह रहा है जिन्होंने उस रोगी को यीशु तक पहुंचाने में सहायता की कि यीशु उससे व्यक्तिगत साक्षात्कार करें। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तब उस रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मित्रों ईश्वर प्रायण और धर्मी माता पिता होना एक सौभाग्य की बात है, परंतु आपके माता पिता की धार्मिकता आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। आपको स्वयं विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आज हमें कलीसिया में चारपाई उठाने वालों की आवश्यकता है, ऐसे विश्वासी पुरुष एवं स्त्रियों की आवश्यकता है कि वे बाहर जाकर उद्धार से वंचित मनुष्यों को लेकर आए कि वे सुसमाचार सुने। आज अनेक लोग हैं जो लकवे के रोगी हैं, उदासीनता का लकवा, पक्षपात का लकवा, निराशा का लकवा, पाप का लकवा आदि। अनेक जन आराधना में वहां नहीं आएंगे जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। आपको उनकी चरपाई का कोना पकड़कर उन्हें लाना है। यही उन पुरुषों ने भी किया था। उनमें विश्वास था इसलिए वे उस असहाय व्यक्ति को यीशु के सम्मुख लाए कि वह यीशु के मुख से सुने, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मित्रों हम मरकुस 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे पढ़ते हैं, तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। मित्रों ये यीशु के वैरी हैं, वे कहते कुछ नहीं है पर मन में बहुत कुछ सोचते हैं। उनका पहला प्रश्न गलत था परंतु दूसरा सही था। यीशु परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा था और यह सत्य है कि केवल परमेश्वर को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। किसी भी न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है कि वह अपराधी को छोड़ दे, उसका उत्तरदायित्व है कि वह न्याय करे और व्यवस्था एवं कानून का संचालन करे। परमेश्वर जगत की नैतिक न्याय करता है, उसे अपने ही बनाए हुए नियमों का रक्षण करना है। परमेश्वर नियम नहीं तोड़ सकता क्योंकि वह न्याय संगत परमेश्वर है, उसने नियम बनाए हैं और वह अपने नियमों का पालन स्वयं भी करते हैं। मित्रों उसके नियम अपरिवर्तनीय हैं, वे बदलते नहीं हैं। इन्हीं नियमों के कारण हम परमेश्वर के समक्ष दोषी पाए जाते हैं। हमें अपने पापों की क्षमा की आवश्यकता है, वह हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। हम यह सोचने की भूल कभी न करें कि उसका दिल बड़ा है इसलिए वह हमें क्षमा कर देता है। वह हमें क्षमा कर देता है क्योंकि मसीह ने हमारा मूल्य चुकाया है, उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा था, वह स्वयं ही परमेश्वर है। वह पाप क्षमा कर सकता था क्योंकि वह इस संसार में आपको और मुझे और उस लकवे के रोगी को मुक्ति दिलाने के लिए आया था। हम मरकुस 2 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? मित्रों उन्होंने कुछ नहीं कहा परंतु मन ही मन में विचार किया। यीशु उन्हें प्रकट करना चाहता था परंतु वे पहले भी उसका सामना कर चुके थे, अतः उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा क्योंकि यीशु पहले उनके दांत खट्टे कर चुका था। इस कारण यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जिसे हम मार्कुस 2 उसके 9 में पढ़ते हैं, सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? वे यीशु के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे, वे चुप थे, परंतु यीशु उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु उनका जूता उन्हीं के सिर पर मारता है। सहज क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? मित्रों, यद्यपि उन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे कहते कि दोनों ही असंभव है, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। यह उत्तर उचित है, और इसी कारण प्रभु यीशु ने उससे कहा कि वह अपनी खाट उठाकर चले। मार्कुस 2 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले अर्थात लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। मित्रों, किसी व्याख्याकर्ता ने इस पद के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए अपने विचार स्पष्ट किए कि यीशु ने उससे कहा वह अपनी खाट उठाकर चले फिरे, जिससे कि उसका फिर से पतन ना हो जाए, वह खाट पर ही पड़ा ना रह जाए। अब उसे चलना था, और हमारे प्रभु ने चमत्कार कर दिया। तब हम मार्कुस 2 उसके 12 पद में पढ़ते हैं, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मित्रों, यहां पर ध्यान रखें कि यह कर्मवाच्य सुसमाचार है, और यह एक कर्मवाच्य चमत्कार है। और आगे हम पढ़ते हैं मार्कुस 2 उसके 13 और 14 पद में, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मित्रों, यहाँ की गतिविधि थमती नहीं है, यद्यपि यहाँ आश्चर्यकर्म नहीं है, तथापि हम गतिविधि देख सकते हैं। यह मति की बुलाहट है। मति लेवी वंश का था, जरा सोचिए, वह याजक वंश का था, परंतु एक आम मनुष्य का सा आचरण कर रहा था। यहाँ खोए हुए गोत्र के विषय में उत्तर है। यह उन अनेकों संदर्भों में से एक है जहां यहूदा से अलग अन्य गोत्र का एक सदस्य है। मेरे मित्रों, वे गोत्र खोए नहीं है, उनमें से एक सदस्य जो लेवी वंश का है यहां हमारे सामने है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य बन रहा है। हमारा प्रभु उसे शिष्य बनने के लिए बुला रहा है। यह एक अद्भुत घटना है। आपको याद होगा कि मती ने अपने सुसमाचार में इस विषय में कुछ भी नहीं बताया है, अपने भोज के आयोजन का उल्लेख नहीं किया, जिसमें उसके मित्र सहभागी थे जो पापी थे। तब हम मार्कुस 2 उसके 15 और 16 में पढ़ते हैं, लिखा है, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, और वह उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि यहां 3 बार कहा गया है कि उसके अतिथि सर्वसामान्य एक पापी जन थे? प्रत्यक्ष है कि उनकी सूची में एक भी भला पुरुष नहीं था। ध्यान दीजिए कि एक सामान्य मनुष्य पापियों से भी बढ़कर समझा जाता था, वहां एक भी धर्मी जन नहीं था, परंतु फरीसी अपने आप को धर्मी कहते थे। तब हम मार्कुस 2 उसके 18 पद में पढ़ते हैं, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। मित्रों, वे व्यवस्था पालक थे, परंतु व्यवस्था में उपवास के कोई निर्देश नहीं थे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए 7 पर्व दिए थे, परंतु उपवास का दिन नहीं दिया गया था। मार्कुस 2 उसके 19 और 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मित्रों, परमेश्वर के कहने का अर्थ यह था कि उसकी सहभागिता, जो पर्वों का उद्देश्य था, उपवास रखने से अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी वही बात है। और मेरे मित्रों, धर्मी बनना और दिखावा करना एक बात है और प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता का आनंद लेना दूसरी बात है और उससे प्रेम करना और बड़ी बात है। तब हम मार्कुस 2 उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। नए दाखरस को पुराने मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को, अर्थात घड़ों को फाड़ देगा, और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु दाख का नया रस नई मस्कों में भरा जाता है। मित्रों, प्रभु उसके साथ प्रेम और सहभागिता के इस नए जीवन के दो उदाहरण देते हैं। वह वास्तव में यह कह रहे थे कि वह व्यवस्था में सुधार करने नहीं आया था, वह न तो उसे आधुनिकीकरण प्रदान करने के लिए और न ही उसमें कुछ जोड़ने आया था, वह तो संपूर्ण रूप से एक नया काम करने आया था। वह पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं, वरन एक नया वस्त्र ही देने आया था। मित्रों, पुराने व्यवस्था के अधीन मनुष्य को कर्म करने होते थे जो मैले और कीड़े लगे वस्त्रों के नाई होते थे। हमारा प्रभु आया कि धार्मिकता का नया चोगा, अर्थात वस्त्र दे दे, जो उस पापी को पहनाया जाता है जिसने मसीह में विश्वास किया है। यह चोगा या वस्त्र उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने में सहायता प्रदान करेगा। यीशु पुरानी व्यवस्था का विस्तार करने या उत्थान करने नहीं आया था, वह तो एक नया काम संसार के पापों के लिए मरने का काम करने आया था। जिस प्रकार नई दाख मधु नई मशक अर्थात घड़े में रखी जाती है, उसी प्रकार नया वस्त्र नए मनुष्य को दिया जाता है, धार्मिकता का वस्त्र। यह एक अद्भुत कार्य है जो अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतिम भाग में हम खेत में सप्त के दिन और अध्याय 3 में हम आराधनालय में सप्त के दिन से आरंभ करेंगे। मित्रों, यह मात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्त के दिन के विवाद के कारण ही यीशु धर्म के अगुओं का वैरी बना था। इसी समय से वे उसे मार डालने की खोज में थे। इस घटना में वह सप्त का प्रभु होने का दावा करता है और आराधनालय में उसने सप्त के दिन भला काम किया था। प्रश्न यह है कि क्या उसने वास्तव में इन घटनाओं द्वारा सप्त के दिन का उल्लंघन किया था? कदापि नहीं। वह तो व्यवस्था को पूरा करने आया था, न कि उसे तोड़ने के लिए। यहां वह वास्तविक अर्थ निर्धारण कर रहा है और वह स्पष्ट करता है कि भलाई करना सर्वोत्तम धर्म है। हम मार्कुस 2 उसके 23 पद में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि वह सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। मित्रों, हो सकता है कि वह खेत गेहूं का हो या जौ का, शिष्य बालें तोड़कर खा रहे थे। फरीसियों के अनुसार या अर्थानुसार बालें तोड़ना कटनी और हथेली पर उन्हें रगड़ना दौनी करने के तुल्य था, जो सप्त के दिन वर्जित था, अर्थात उन्हें नहीं करना था। व्यवस्था के अनुसार हाथ से बाले तोड़ने की अनुमति थी। व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत में हंसुआ न लगाना। इसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 24 और 25 पद में पाते हैं। मित्रों, फरीसियों का अपना अलग ही अर्थ निर्धारण होता था, अतः उनके लिए शिष्यों का यह काम व्यवस्था विरोधी था। तो मित्रों, यहां पर हमने देखा कि फरीसियों का अपना ही अर्थ होता था जो व्यवस्था के अनुसार भी नहीं था। वे अपने अर्थ को लोगों पर थोपना चाहते थे। उनके दृष्टि में शिष्यों का यह काम करना व्यवस्था विरोधी था, जबकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक जिसे हमने अभी पढ़ा 23 अध्याय उसके 24 और 25 पद में ऐसा कुछ भी नहीं है, वे तोड़कर खा सकते थे। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार हम अपने जीवन को व्यवस्था की उन बातों से बांध लेते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं और जो सही चीज है उसे हम करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं कि वह व्यवस्था से भी बढ़कर हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम चंगे किए जाएं। वो चाहते हैं कि हम उद्धार को प्राप्त करें। वे चाहते हैं कि उन व्यवस्था की बातों से बढ़कर जो परमेश्वर है उसे हम जानें। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के मुखों को बंद कर दिया। मित्रों, हम आने वाले समय में इसके और भी विवरण देखेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को डालना सीखें और देखें कि आप किस रीति से परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाते हैं। आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य ही इसके द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं और अपने मित्रों को भी इसके बारे में अवश्य बताएंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप हमें अवश्य पत्र लिखें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं, तो आप हमें अवश्य लिखें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस जीत वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें बताया है पिता परमेश्वर कि हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दूल्हा हमारे साथ में है। उपवास तो वे करते हैं जिनके पास दूल्हा नहीं है। और आपने अपने वचन में हमें बताया है कि व्यवस्था को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप इस जगत में इसलिए आए कि आप व्यवस्था की बातों को पूरा करें, ना कि उसे तोड़ें। आप हमारे पापों के बदले में कीमत चुकाने के लिए आए। आपने अपने उस पवित्र लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिया ताकि हम उस पाप से छुटकारा पाएं, हमारे पाप धुल जाएं और हम बच जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी प्रिय श्रोता भाई बहन आपके वचन को आज सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन को जानते हैं, उनके हर एक तकलीफों को जानते हैं। आप उनसे बातचीत करें, उनके हर एक अपराधों को आप क्षमा करें, ताकि वे भी आपके शांति को पाकर अपने जीवन में आपको जगह देने पाएं और जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसी महिमा हो तेरी, महिमा हो मसी महिमा हो, सुबह को हो दोपहर को हो संध्या को सारी रात्रि को, मसी महिमा हो तेरी महिमा।